मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 25 जुलाई 2016 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही दोस्तों, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं प्रदीप त्रिपाठी, आप दिल्ली से हैं, संदीप कुमार गोंड, आप इलाहाबाद से हैं, राम प्रकाश, आप दिल्ली से हैं, वर्तिका यादव, आप भी दिल्ली से हैं, और रजत चौधरी, आप आगरा से हैं। तो प्रदीप, संदीप, राम प्रकाश, वर्तिका और रजत, आप सभी 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 25 जुलाई है और ठीक इसी तारीख को, 2 महीने बाद इसी तारीख को, जो 5वें बैच के जो स्टूडेंट हैं, हम सब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यानी कि मित्रों, अब जो अभी बैच शुरू होने वाला है उसमें मात्र 2 महीने का वक्त रह गया है। फ्रेंड्स, इस 2 महीने के वक्त को गुजरने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा। आप में से जो स्टूडेंट शुरुआत वाले होंगे, वो कल्पना करें कि जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था तब उनको लग रहा होगा कि अभी तो 6 महीने बाकी हैं, 7 महीने बाकी हैं, 4 महीने बाकी हैं, फिर लग रहा होगा 3 महीने बाकी हैं। और मित्रों, एक दिन ऐसा आएगा जबकि आपको लगेगा कि अब तो मात्र 3 घंटे ही बाकी रह गए हैं। तो दोस्तों, इस अवसर पर मैं अपने 5वें बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका विशेष रूप से, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं 2 महीने इन एडवांस। और ये एक संयोग देखिए फ्रेंड्स कि हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं जिनका नाम है प्रशांत मवानी, और जो जिन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से की है और लंदन के द्वारा अलग अलग कॉलेजेस से की है और फिर वो यहाँ बैच में आए थे। और वो खासकर बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट थे, यहाँ के जो 15 दिन की क्लासेस जो उन्हें लगी उनके बारे में उन्होंने स्टेज पर आकर लोगों को बताया भी था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, और मेल भी वो लगातार लिखते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही उनका एक मेल आया था जिसमें मैंने इनका नाम लेते हुए कहा था ब्यूटीफुल इंग्लिश, थैंक्स फॉर ब्यूटीफुल इंग्लिश। बट नेचुरल है कि वो लंदन में उन्होंने पढ़ाई की है तो अंग्रेजी स्वाभाविक है कि उनकी बेहतर होनी चाहिए। एक संयोग देखिए फ्रेंड्स, आज जबकि नए बैच के शुरू होने में ठीक 2 महीने बचे हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए एक वेलकम मैसेज भेजा है। हालांकि उन्हें शायद ज्ञात न हो कि ये मैसेज उनका 2 महीने पहले पढ़ा जाएगा। और सच पूछे तो मैं अपने बैच के जो पहले बैच के स्टूडेंट रहे हैं उनकी इस तरह की एक्टिविटीज को, उनके एकेडमी के प्रति जुड़ाव और एकेडमी के प्रति शुभचिंता, और सच पूछिए तो कहीं न कहीं एकेडमी का उनके द्वारा अपने जीवन में दिए गए योगदान की स्वीकृति मानता हूं। तो मित्रों, जो 5th बैच के स्टूडेंट हैं, देखिए वो क्या लिखते हैं। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं, फिर मैं उसको हिंदी में अनुदित करके या उसका सेंस बताने की कोशिश करूंगा। देखिए उन्होंने जो लिखा है, पहले उन्होंने लिखा है कि कुछ शेयरिंग कॉन्सेप्ट पर लिखा है कि कैसे एकेडमी अपने थॉट्स को शेयर कर रही है और ये जो 15 दिन की क्लासेस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। फिर उन्होंने खासकर स्टूडेंट के लिए लिखा है, आप सबके लिए, विद द हेल्प ऑफ दिस मेल आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द नेक्स्ट बैच स्टूडेंट दैट, फिर इन्वर्टेड में लिखा है प्रशांत ने, फ्रेंड्स यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द 15 डेज क्लास, देयर आर नो इंस्ट्रूमेंट्स which can measure the quality of things which you will get there. I am convinced that 15 days class is one of the most beautiful thing that will happen in your life. Make the maximum out of it. You all and I are lucky to be a part of such a great academy. Enjoy. ये उन्होंने लिखा है दोस्तों. इस संदेश के शब्दों में जो सच्चाई है और जो भावनाओं कि आप कह लीजिए आर्द्रता है मित्रों, मैं उसे महसूस कर सकता हूं. और मुझे लगता है कि शायद 15 डेज की क्लासेस अटेंड करने के बाद आप भी उस गीलेपन को, उस आर्द्रता को, उस नमी को डेफिनेटली महसूस करेंगे. इसके लिए एकेडमी पूरी कोशिश करेगी. मित्रों अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ देता हूं. इस मेल के माध्यम से मैं नेक्स्ट बैच के जो स्टूडेंट हैं उनसे कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप नहीं जानते कि 15 दिन की इन क्लासेस में आप क्या हासिल करने जा रहे हैं. ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिसके द्वारा आप उन चीजों को माप सकें जो आप वहां प्राप्त करेंगे. कम से कम मैं तो इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हूं, कन्विंस्ड हूं कि वह जो 15 दिन की जो क्लासेस होंगी वो आपके जीवन के सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण दिन होंगे. इस समय का जितना अधिक से अधिक उपयोग कर सकें करने की कोशिश करें. आप सब और मैं बड़े सौभाग्यशाली रहे हैं कि हम इस महान एकेडमी के हिस्से रहे हैं. एन्जॉय मतलब इसको आनंद उठाइए. तो मित्रों ये एड्रेस किया है हमारे बैच के स्टूडेंट ने, सेकेंड बैच के स्टूडेंट ने. और चूंकि फिफ्थ बैच के वो सीनियर ही हैं, कह लीजिए फिफ्थ बैच के स्टूडेंट्स के लिए सीनियर हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपके ही एक सीनियर ने आपको एड्रेस किया है. अपनी भावनाओं को आप लोगों के सामने व्यक्त किया है. और इसका जो रोल है मित्रों वह यही है कि जब आप एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर एकेडमी में आते हैं तो आपका मानस बिल्कुल अलग होता है. जब आप डाउट के साथ आते हैं, द्वंद्व के साथ आते हैं, तो मानस बिल्कुल अलग होता है. और जैस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. आप जैसा मानस लेकर यहां आएंगे उसी तरह की चीजें लेकर यहां से जाएंगे. तो प्रशांत आपके इन शब्दों के लिए मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं. और खासकर अपने फिफ्थ बैच के स्टूडेंट की ओर से भी कि आपने अपने बड़े होने के दायित्व के निर्वाह का प्रमाण इस मैसेज के माध्यम से दिया है. फ्रेंड्स अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर. आज 8 मिनट का वक्त लगभग गुजर चुका है, हमारे पास अब इसके लिए केवल 6-7 मिनट बाकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी वक्त है हम इस्तेमाल करेंगे. फ्रेंड्स मैं आपसे सुल्तान फिल्म के बारे में बात कर रहा था और सच में मेरा मन कर रहा है कि मैं सुल्तान फिल्म के बारे में कुछ और आपसे बातें करूं. मैंने पहले कहा भी था, वो खासकर इसलिए दोस्तों कि आप ये जान सकें कि कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं होती है, आप हैं जो उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं. एक किताब जो लिखी गई है जो दूसरों के लिए बेकार हो सकती है, आप हो सकता है कि पढ़कर उसे बहुत कीमती बना दें, ये आप हैं. या हो सकता है कि बहुत अच्छी किताब है, दुनिया उसकी तारीफ करती है, लेकिन आपके हाथों में आकर के वो 2 कौड़ी की हो जाए. यानी कि जो कुछ भी है वो हम हैं. मित्रों जो कला होती है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा भी है और आपको कला के बारे में जानना भी चाहिए, कला का मतलब होता है संभावनाओं का पिटारा, बॉक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. मतलब उसमें क्या क्या अर्थ निकलेंगे, वहां जो लिखा गया है उसका हमें अंदाजा नहीं होता है. और जो व्यक्ति जितना ज्यादा कला मर्मज्ञ होता है, संवेदनशील होता है, जिसकी समीक्षा दृष्टि जितनी गहरी और व्यापक होती है, अध्ययन जितना व्यापक होता है, जीवन के प्रति जो सोच है, जो उसका अवलोकन है वो जितना बृहद होता है, उसमें से वह उतनी संभावनाओं को स्वरूप में तब्दील कर देता है. यानी कि उन संभावनाओं को आपके सामने रख देता है. मित्रों यही कला का सबसे बड़ा चमत्कार है और सच पूछे तो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है. एक जो बौद्धिक चीज होती है, जो एक इंटेलेक्चुअल चीज होती है, इंटेलेक्चुअल चीज में उतनी संभावनाएं नहीं होती. आप अलग अलग कोणों से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते. उस कर तो सकते हैं लेकिन संभावनाएं बहुत कम होती हैं, उसके क्षेत्र बहुत सीमित होते हैं. लेकिन कला के तो इतने व्यापक क्षेत्र होते हैं कि आप जो भी क्षेत्र उस पर अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं. और मित्रों यही कोशिश मैं सुल्तान फिल्म पर कर रहा हूं, और मेरा मकसद यहां सुल्तान फिल्म के बारे में आपको समझाना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुल्तान फिल्म पर कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मेरा जो मकसद है वो डेफिनेटली लाइफ मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देना है ही, लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही साथ मुझे यह भी लगता है कि एक अवसर है, क्योंकि सुल्तान फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसको मैं ये मानकर चलता हूं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आप सबने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो इस बीच में आप देख लेंगे। वो ये फ्रेंड्स कि एक जो समीक्षा दृष्टि होती है, जो पावर ऑफ एनालिसिस होती है, वो कहां तक जा सकती है, आप कैसे एक ही किताब, एक ही टॉपिक, एक ही फिल्म में जो अलग अलग बिखरी हुई चीजें हैं उनको एक सूत्र में जोड़कर उनका इस्तेमाल आप अपने तर्क या अपनी स्थापनाओं को सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं। और आप देखेंगे इससे पहले भी जो मैंने बात की है और अभी भी मैं जो बात करूंगा, मैं बाहर से चीजें लेकर नहीं आऊंगा, मैं जो भी बात करूंगा वो सुल्तान फिल्म को ही केंद्र में रखकर करूंगा। यानी कि जो भी चीजें मैं लूंगा उदाहरण के रूप में, अपनी बात को तार्किक रूप से प्रस्तुत करने के रूप में या कंटेंट के रूप में, वो सिर्फ सुल्तान फिल्म के ही होंगी। यानी कि मैं बाहर से कोई चीज लेकर नहीं आऊंगा। और मैं आप लोगों को बिल्कुल ओपन ऑफर देता हूं कि जिन चीजों के प्रति आपकी असहमति हो कंटेंट वाइज, एनालिसिस वाइज, तो आप बिल्कुल आमंत्रित हैं अपनी बात को कहने के लिए, रखने के लिए, बिना किसी संकोच के आप अपना जो भी मंतव्य है, आपके जो भी अपने थॉट्स हैं, आपकी जो भी दृष्टि है, आप उसे रखें। तो मित्रों आज मेरे पास ज्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन मुझे ये बात स्पष्ट करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि तभी आप मेरे इसके पर्पज को समझ पाएंगे। अदरवाइज फिर आप यही समझेंगे कि मैं सुल्तान फिल्म के माध्यम से केवल आपको जिंदगी की बातें बता रहा हूं। वो तो है ही, वो इसलिए है क्योंकि ये लाइफ मैनेजमेंट के पार्ट के अंतर्गत मैं कर रहा हूं, लेकिन वो बहुत ही एक छोटा मकसद है। मेरा मकसद है इसके माध्यम से आप देखिए कि एक इंटरटेनिंग फिल्म, ये वास्तव में ये कोई आर्ट फिल्म नहीं है, ये कोई समानांतर सिनेमा भी नहीं है, ये कोई जिंदगी से जुड़ा हुआ सिनेमा भी नहीं है, ये इंटरटेनिंग सिनेमा है जिसको कहते हैं, जिसको मुख्य धारा की फिल्म कहते हैं, जिसका उद्देश्य है मनोरंजन करना। ये फिल्म आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इसलिए फिर ये लगता है कि जब फिल्म मनोरंजन के लिए तो उसमें जिंदगी कहां से होगी। मुझे ये लगता है दोस्तों कि जो चीज जिंदगी के लिए बनाई गई है उसमें जिंदगी को खारिज कैसे किया जा सकता है, जिसमें जिंदगी ही नहीं होगी वो जिंदगी के लिए कैसे हो सकती है, मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है। अब ये बात अलग है कि हम उसमें जिंदगी को देख कितना पा रहे हैं, जिंदगी को समझ कितना पा रहे हैं। नो डाउट फ्रेंड्स कि जो सिनेमा होता है, जो कहानी होती है, जो उपन्यास होते हैं, वो सच नहीं होते। हम नहीं मान सकते कि कोई सुल्तान हरियाणा में ऐसा रहा होगा, कोई आरफा भी ऐसी पहलवान जो महिला पहलवान है रही होगी, किसी एक की जिंदगी इसी के समानांतर घटित हुई होगी, हम नहीं मानते, वो सच नहीं होता है। लेकिन मैं दोस्तों इस बात को जरूर मानता हूं कि ये जो कहानी है, सिनेमा है, ये सच तो नहीं होते, लेकिन इनमें जिंदगी का सच जरूर होता है। वो सच हमें पकड़ना पड़ता है, वो सच हमें निकालना पड़ता है, उस सच को हमें ढूंढना पड़ता है। तो मित्रों क्या बेहतर ये नहीं होगा कि आप सब अब एक दिन के लिए इस सच की तलाश करें, अपने अपने स्तर पर इसे ढूंढने की कोशिश करें, देखें कि आप इनमें से जिंदगी के क्या सूत्र निकाल सकते हैं, फार्मूले निकाल सकते हैं, निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं किसी एक नए इश्यू को लेकर के आपसे बातचीत करूं, तो फिलहाल मेरे इस दायित्व को मैं आपको सौंपता हूं कि आप मेरे बिहाफ पर निकालने की कोशिश करें, और फिर जब मैं अपनी बात कल आपके सामने रखूंगा तो फिर आप देखें कि आपके साथ कितनी चीजें मैच कर रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आप मुझसे इतर, मतलब मुझसे हटकर भी बहुत सी नई चीजें अपने स्तर पर निकाल लेंगे। मैं संपूर्ण को निकालने का दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मेरी तो अपनी जो छोटी सी सीमा है उस सीमा में मैं निकालूंगा, और आप सब अपनी अपनी सीमाओं में निकालेंगे, और यही बौद्धिकता है, यही संवेदनशीलता है, और सच पूछिए तो यही रचनात्मकता भी है, क्रिएटिविटी भी है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट को हम इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समाप्त करते हैं। डेफिनेटली कल हम इसी इश्यू पर और अच्छे से और मजेदार तरीके से बातें करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज आपने सुनी होगी। सच पूछे तो AIR न्यूज में फ्रेंड्स ऐसा कुछ विशेष है नहीं। पाकिस्तान को भारत ने एक तरीके से जो डिप्लोमेटिक रिप्लाई दिया है आतंकवाद को लेकर, उसी की खबर थी सबसे बड़ी, और वो लंबे समय तक भी चलती रही, और ये बड़े लंबे समय से चल रहा है मित्रों की पाकिस्तान सच पूछे तो भारत में आतंकवादी गतिविधियां कराने से बाज नहीं आ रहा है। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान भले ही एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन अभी भी वहां उसका वहां के प्रजातांत्रिक सरकार पर, मतलब चुनी हुई सरकार पर जो शिकंजा है वो आर्मी का ही है। वो आर्मी के शिकंजे से अपने को मुक्त नहीं कर पाती है, और आर्मी का इंटरेस्ट इसी बात में होता है कि वो तनाव बनाकर रखे ताकि उसकी पूछ परख होती रहे। और वैसे भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पूरे अब तक के इतिहास में लगभग उसका भी इतिहास हमारे लगभग क्या बिल्कुल बराबर ही है, और उसमें भी लगभग 70 साल के इतिहास में ऑलमोस्ट कह लीजिए आप देखते हैं कि कई बार तख्ता पलट हो चुका है, और तख्ता पलट करने वाला जो समूह है वो आर्मी ही है। तो वो पाकिस्तान के एक लोकतांत्रिक सरकार की मजबूरी कह लीजिए या जो भी आप कहना चाहें, तो ऐसी स्थिति में भारत ने अभी जो स्टैंड लिया है एक बहुत ही फर्म स्टैंड लिया है, उसे आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं उन्होंने बहुत ही कोशिश की है कि किसी तरह से इस पर सलाह मशविरे से बात बन जाए। अचानक भी वो लौटते समय पाकिस्तान उतर जाते हैं, मिलते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कभी कभी सच पूछे तो लगता है कि शायद पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसी के पक्ष में है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने कहा दोस्तों कि इतना ज्यादा दबाव है पाकिस्तान पर सेना का कि वो उसको उससे उबर नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अमेरिका भी इस बात से काफी कन्विंस हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, वहां इसके कैंप हैं और यहां उनके संगठन प्रशिक्षित करते हैं। इसीलिए धीरे धीरे वह अमेरिका जो पाकिस्तान की पीठ पर हमेशा अपने दोनों हाथ रखता था, अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसने हाथ हटाना शुरू कर दिया। और ऐसी स्थिति में फिर पाकिस्तान को एक और कोई दोस्त चाहिए, तब वो चीन के निकट आता जा रहा है। देखते हैं कि किस तरह से गठजोड़ तैयार होते हैं और इसका क्या हल निकलता है। सच पूछिए तो जब इसके हल की बात आती है मित्रों, तो यही है कि जो हल निकलना चाहिए वो शिमला समझौते के तहत, और वो शिमला समझौता ये है कि दोनों आपसी बातचीत के जरिए इस मसले को हल करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब भी बातचीत की जाती है तो उसका फिर कोई हल नहीं निकलता सिवाय इसके कि अगले बार फिर इस पर बातचीत होगी। तो ये बहुत लंबे समय से ये सिलसिला चलता आ रहा है। दोस्तों, जो दूसरी खबर थी वो थी केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं उनके मूल्य को कम करें, उनके मूल्य को थोड़ा नियंत्रित करके लोगों तक पहुंचाएं। खासकर ये जो समय है, ये जो बरसात का मौसम होता है, इसमें महंगाई काफी बढ़ जाती है, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कारण वो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। उसमें आपने देखा दोस्तों, उन्होंने जो कहा कि स्टेट अपने टैक्सेस कम करे, है ना। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हालांकि आप जानते होंगे। देखिए, टैक्स लगाने के अधिकार दो हैं, एक तो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है जिसमें आप इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी वगैरह लेते हैं, केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार ही इसे वसूल करती है, और फिर बाद में राज्यों को उन राज्यों से वसूल किए गए धन का एक निश्चित प्रतिशत वापस कर देती है, जो 14th पे कमीशन ने 42% फिक्स कर दिया तो उसको रिटर्न कर देती है। दूसरा यह कि राज्यों को भी टैक्स लगाने के अधिकार हैं, ये टैक्स नहीं, दूसरे तरह के वो टैक्स लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए संपत्ति कर तो राज्य लगाती है, राज्य वसूल करती है ना, जमीन वगैरह की जो रजिस्ट्री होती है वो स्टेट लगाती है और स्टेट वसूल करती है। तो इस तरह से राज्य भी अपने कुछ टैक्सेस लगाते हैं। आपने देखा है फ्रेंड कि अगर आप पेट्रोल और डीजल के दाम देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम आपको हर जगह अलग अलग मिलेंगे, हर जगह का मतलब हर स्टेट में अलग अलग आपको उसके दाम मिलेंगे। अब केंद्र सरकार तो सबको एक ही रेट पर दे रही, केंद्र सरकार क्या मतलब जो कंपनीज हैं ONGC और ये जब कंपनीज तेल की कंपनी, ये सभी स्टेट को एक ही जगह रेट पर दे रही हैं। हाँ, थोड़े से ट्रांसपोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत रेट में अंतर हो सकता है, लेकिन आपको बहुत अंतर मिलेगा। यहां तक कि जो बिल्कुल इसमें आप जैसे हरियाणा और दिल्ली ले लीजिए, तो ये तो बिल्कुल बॉर्डर ही है, वहां भी आपको दोनों स्टेट में टैक्स के अंतर मिल जाएगा। कार को ले लीजिए, कार पता लगा कि दिल्ली में थोड़ी सी महंगी है, हरियाणा में थोड़ी सी सस्ती है, या इसके उलट भी, हरियाणा में महंगी है, दिल्ली में सस्ती, जबकि बन वो हरियाणा में रही है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो इस बात पर ही डिपेंड करता है कि वो चीज वहां किस रेट में बिकेगी, उससे चीजें महंगी हो जाती हैं, उससे चीजें सस्ती हो जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपनी जरूरत और अपनी नीतियों के तहत टैक्स का निर्धारण करती है। तो केंद्र सरकार ने यही कहा है कि वो टैक्स को कम करें। सामान्यतः यह माना जाता है फ्रेंड्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं 6% to 13% तक टैक्स होते हैं, और रेट में इतना फर्क पड़ सकता है। तो अगर इसका एवरेज निकाल लें, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को खत्म तो खैर कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है कि उनको रेवेन्यू चाहिए, तो अगर खत्म कर दें तो समझिए कि वस्तुओं की कीमत में लगभग 7-8% तक की कमी हो सकती है। लेकिन अगर कम कर दें तो कम से कम 3-4% की कमी तो हो सकती है, और 3-4% की कमी भी हो जाना खुदरा मतलब होलसेल रेट इंडेक्स के हिसाब से कम नहीं होगा, काफी उसका फर्क पड़ सकता है। तो ये बात उन्होंने, केंद्र सरकार ने कही है। इसके बाद मित्रों एक खबर थी हैदर रजा साहब के निधन की, तो सबसे पहले तो मैं रजा साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं फ्रेंड्स, आप सबकी ओर से भी, अपने एकेडमी की पूरी टीम की ओर से भी, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से भी, और अपनी ओर से भी, कि ईश्वर उनकी महान आत्मा को शांति प्रदान करे। मित्रों हैदर रजा साहब एक बहुत ही महान शख्सियत में थे, और मेरा यह सौभाग्य था कि मैं उनसे मिला हुआ हूं, उनसे बात करने का मुझे मौका मिला है, और उनको सुनने का भी मुझे मौका मिला है। मैंने जो कहा महान शख्सियत, वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो दुनिया के महान चित्रकारों में से एक थे, नो डाउट महान चित्रकारों में से एक तो थे। आप उनकी अगर महानता का आधार चित्र की कीमत होती है, तो आप सोच करके देखिए कि कुछ समय पहले उनका एक चित्र हिंदुस्तान में ही करीब 15 या 16 करोड़ रुपए में उनका एक चित्र बिका था, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो महानता तो उनमें चित्रकार के रूप में थी ही, लेकिन सबसे बड़े थे कि वो शख्स के रूप में, एक इंसान के रूप में उससे भी कहीं ज्यादा महान थे। कोई दिमाग में संकीर्णता नहीं, कोई जाति धर्म भाषा क्षेत्र का कोई भेदभाव नहीं, और सबसे बड़ी बात थी कि वो अपने रूट से इतने गहरे जुड़े हुए थे अपनी जमीन से कि मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो अपने लोगों को, अपने स्थान को कितनी गहराई और कितनी भावनात्मकता के साथ याद करते थे, और उनकी उस सबकी अभिव्यक्ति उनके चित्रों में है। हालांकि वो बहुत पहले ही फ्रांस चले गए और लंबे समय तक फ्रांस में ही रहे, इसके बावजूद कभी भी वो हिंदुस्तान को भूल नहीं सके, और अभी कुछ साल पहले वो फिर भारत वापस आ गए थे और यहीं फिर रहने लगे थे। उनका एक बहुत बड़ा फाउंडेशन भी है जो खासकर कला साहित्य संस्कृति के लिए काम भी करता है, और अशोक वाजपेयी जी का अगर आपने नाम सुना हो, जो मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर थे, मध्य प्रदेश के संस्कृति सचिव भी रहे, और भारत भवन जैसे जो आप इंस्टीट्यूशन का नाम सुनते हैं वो उन्हीं की ही देन है। तो संस्कृति के क्षेत्र में वो ऐसे सिविल सर्वेंट रहे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं जानबूझकर के उनकी बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि सिविल सर्वेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास वो समझ हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो झील हो, वो उत्साह हो, तो उनके पास भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने के अवसर होते हैं। तो अशोक वाजपेयी जी बहुत ही निकट से रजा साहब से जुड़े हुए थे, जब मैं मिला था तब अशोक वाजपेयी जी भी उनके साथ ही थे, और अभी भी लगातार उनके साथ ही वो रहते थे, और फाउंडेशन से भी वो उनके फाउंडेशन से भी जुड़े हुए थे। तो मित्रों एक बार मैं फिर से इस महान आत्मा के प्रति आप सबकी ओर से, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले आप सबको चाहिए कि रजा साहब की जो पेंटिंग है, उनकी पेंटिंग्स की क्या विशेषताएं हैं, उस पर आप थोड़ा सा एक छोटा सा नोट्स बना लें। मेंस के दृष्टि से मैं कह रहा हूं, मुख्य परीक्षा अभी जो दिसंबर में होगी, तो हो सकता है कि कोई टिप्पणी जैसी चीज पूछ ली जाए, क्योंकि कला संस्कृति साहित्य ये आपके सिलेबस में है, इस लिहाज से मैं ये बात कह रहा हूं। तो मित्रों न्यूज से बस इतना ही, अब मैं आता हूं न्यूज पेपर पर। फ्रेंड्स आज न्यूज़पेपर्स में बहुत अच्छी अच्छी क्लिपिंग्स हैं, कहीं मैं बाद में उसकी चर्चा करना भूल न जाऊं तो मैं दो क्लिपिंग्स की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा दोस्तों। या ये दोनों दैनिक भास्कर की क्लिपिंग्स हैं। दैनिक भास्कर मंडे के अपने एडिशन में लाइफ को लेकर के चीजें देते हैं, लाइफ मैनेजमेंट ही कह सकते हैं हम, उनसे रिलेटेड चीजें देते हैं और ये काफी समय से देते आ रहे हैं, लगभग मैं समझता हूं कि 1.5-2 साल तो हो गए होंगे। बीच बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड भी आपको उस तरीके से करता हूं, मैं हर हफ्ते तो नहीं करता, मैं जो आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड करता हूं वो उन क्लिपिंग्स वो आर्टिकल्स आपको देता हूं दोस्तों जो आपके फोर्थ पेपर के लिए उपयोगी मुझे लगते हैं, जो आपका जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर है। आज जो मैं दो क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये वाकई दोनों बहुत अच्छे क्लिपिंग्स हैं और खासकर इसमें जो मेजर डीपी सिंह का आर्टिकल है ये आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये कारगिल युद्ध में रहे हैं, ईश्वर ने उन्हें बचा लिया लेकिन पूरी तरह से जख्मी होने के बाद, और सच पूछे तो मृत्यु से ही वो लौट कर आए हैं। और मित्रों ये आर्टिकल आप थोड़ी सी संवेदना के साथ पढ़िएगा, स्ट्रेट तरीके से मत पढ़िएगा कि कोई भी चीज पढ़ी और छोड़ दी, इन सब चीजों के लिए ना थोड़ा सा भावुक होइए। भावुक होना मतलब अपने अंदर मनुष्यत्व को जिंदा रखने का एक प्रमाण है, एक कोशिश है कह लीजिए, तो थोड़ी सी भावुकता के साथ पढ़िएगा ताकि आप डीपी सिंह को अपने अंदर महसूस कर सके कि नहीं आप ही डीपी सिंह हैं, या उस समय जब लिख रहे थे तब आप ही ने लिखा है डीपी सिंह बनकर के, या वास्तव में डीपी सिंह ने लिखते समय कैसा महसूस किया होगा। तो आपको उनकी जो ईमानदारी है ना, अंदर की जो ईमानदारी है मित्रों, वो शब्दों में दिखाई देती है, आपकी राइटिंग में झलकती है और वही उस ईमानदारी आप तक पहुंचती है। जो आपको चीजें प्रभावित करती है ना, वो वही ईमानदारी ही प्रभावित करती है और वही चीज प्रभाव डाल करके आप में परिवर्तन भी लाती है, यानी ये बड़ा विचित्र किस्म का मैकेनिज्म है, ये इसका बड़ा अद्भुत सिस्टम है। तो मित्रों उस तरीके से आप पढ़िएगा, प्लीज थोड़ा सा अपने पढ़ने के तरीके को कुछ आर्टिकल्स के साथ बदल दीजिए और जिंदगी के आर्टिकल्स को पढ़ते समय थोड़ा सा अपने दिमाग में जिंदगी को शामिल कर लीजिए, और जिंदगी को शामिल करने का मतलब है कि दिमाग के साथ साथ दिल का संतुलन बना लेना। तो उस तरीके से पढ़िएगा और आपको बहुत अच्छी चीजें इसमें से फोर्थ पेपर के लिए निकलेंगी, उन्हें आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों आज जिस पर मैं आपको 3-4 क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो अपने एडिटोरियल कमेंट का नाम ही लिखा है 25 साल बाद। आप सोच के देखिए, मजेदार बात, उन्होंने ये नहीं लिखा कि आफ्टर 25 इयर्स, इस पर विचार कीजिए, उन्होंने शीर्षक दिया है 25 साल बाद। मित्रों 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया था। पहला बजट मतलब इस रूप में कि जिससे भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, और आज 25 जुलाई है, यानी कि 25 साल हो चुके हैं, 25 जुलाई 2016 है, और इन 25 सालों में हमने क्या पाया है, कहां हम चूक गए हैं, खासकर उदारीकरण को लेकर के, लिबरलाइजेशन को लेकर के, बस इस पर ये एडिटोरियल कमेंट है। और इसी पर भास्कर ने दो चीजें बहुत अच्छी छापी हैं, एक तो आर जगन्नाथन जी का जो वीकली एक रिव्यू आता है उसमें इन्होंने टॉपिक ही 25 साल को लिया है, और ठीक इसी तरीके से भास्कर ने एक कंपैरेटिवली एक न्यूज स्टोरी छापी है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने 25 साल को कंपेयर किया है कि ठीक 25 साल हमारे यहां कितनी कार बिकती थी, आज कितनी बिक रही है। कार बिकती थी 1.8 लाख और अभी हमारे पास हमारे देश में बिक रही 27 लाख। 25 साल पहले कृषि का जो योगदान था हमारे GDP में वो 23% था, अब वो 14% हो गया है। सर्विसेज में हम कितना थे, 42.5% थे, तो अब 60% हो गया है। निर्यात हम सिर्फ 18 अरब डॉलर का करते थे, अब हम 262 अरब डॉलर का कर रहे हैं। तो इस तरह के ना बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कंपैरेटिवली डेटा भी दिए हैं, और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि इसके बावजूद हमें किन किन सुधारों की जरूरत है, तो वो तो आपको दोनों आर्टिकल्स में भी मिलेंगे जो मैंने अभी बताया, और इसमें भी दिया हुआ है कि पूरी तरह से सुधार हम अभी भी आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र में नहीं कर पाए हैं। तो मित्रों ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखिए 25 साल पूरे हुए हैं और लिबरलाइजेशन पर तो हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे उसके कल्चरल पार्ट को लेकर के हो या इकोनॉमिक पार्ट को लेकर के हो या टोटल सोशल रिफॉर्म को लेकर के हो, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो मुझे लगता है कि इस बार के दिसंबर एग्जाम में उदारीकरण की टोटल समीक्षा पूछी जा सकती, क्या खोया क्या पाया के को ध्यान में रख करके पूछा जा सकता है। तो इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा और इसे ध्यान से पढ़िएगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मित्रों अब न्यूज़पेपर्स के बाद अब मैं ईमेल पर आता हूं। तो सबसे पहले मेरे सामने नेहा यादव का ईमेल जो इलाहाबाद से हैं, उन्होंने जानना चाहे कि सर ये एएफई क्या है। एएफई बहुत ही सिंपल सी चीज है, एकेडमी स्टैंड ए एकेडमी एफ फॉर एक्सीलेंस, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस उसका शॉर्ट फॉर्म है एएफई। उसके अंदर आईएएस लगा दिया है क्योंकि ये जो एकेडमी है ये बेसिकली एक्सक्लूसिवली आईएएस पर ही इसका ध्यान है ना। अब ये बात अलग है कि उसके साथ ही आपके स्टेट सिविल सर्विस और दूसरे कवर हो जाते हैं, लेकिन जो लेकर के चलती है जो केंद्र है इसका वो आईएएस ही है, इसीलिए उसमें जानबूझ करके आईएएस डाला गया है ताकि स्टूडेंट इसको एज ए टोटल कॉम्पिटिशन ना माने। हमने इसको एक तरह से विशेषज्ञता के तौर पर रखा है कि ये आईएएस का ही है और डॉट कॉम है बस। तो ये एएफई है नेहा, मेरी समस्या अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अच्छा आपने प्रश्न किया, आपके माध्यम से दूसरे भी स्टूडेंट्स के मन में यदि कोई ऐसा सवाल रहा होगा तो वो क्लियर हो चुका होगा। तो मित्रों जिन्होंने भी मेल लिखे हैं उन सबके प्रति बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, प्रियंका लिखार नागपुर महाराष्ट्र से, अरविंद सिन्हा दरभंगा बिहार से, नीतीश कुमार बेगूसराय बिहार से, जीत सिंह राजपूत जबलपुर मध्य प्रदेश से, राकेश कुमार बंगलुरु से, प्रियंका गुप्ता प्राची, शिव जावला, अरविंद यादव बलिया उत्तर प्रदेश से और मधुकर उर्मलिया गोवा से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं विराम प्राप्त करता है, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।